तो इस धाम में हमको एक बात बताना समझना ज़रूरी है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, केवल ये वृक्ष नहीं है तो बहुत विशेष वृक्ष है, लेकिन जितने भी वृक्ष होते धाम में वो सब चिरंतन होते हैं, उनको कल्पतरु कहा जाता है। कल्प वृक्ष, उसका मतलब क्या होता है कि उस वृक्ष के सामने खड़े होकर आप जो भी इच्छा पूरी करें मांगेंगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी, उस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। और भगवान का धाम जो है वो ऐसे अनंत कल्प वृक्षों से सुशोभित है, हर एक पेड़ वहाँ पर कल्पतरु है, उसी तरह से ये भी ये कल्पतरु है। लेकिन आप गलती से उनके पास में से कोई भौतिक इच्छा मत करना, मैंने कल भी बताया था आपको, उनके अंदर वो शक्ति है कि अगर आप मांगे तो आपको भगवान के चरणों की रति दे सकते हैं। इस जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, शरीर की व्याधियां, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इनसे मुक्ति दिला सकते हैं। अन्य लाभ वस्तुओं को मांग के क्या लाभ है, बार बार यहाँ आना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरा शयनम, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं। हाँ, जो जीव मृत्यु को प्राप्त करके फिर माता के गर्भ में प्रवेश करता है वो उनके पास में आता है और फिर उनको वो दुनिया में छोड़ देते, जाओ जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी को भोगो। लेकिन हम तो उनको विनती करते हैं कि जिस माता के गर्भ में कोई गर्भ आया है उसको प्रण लेना चाहिए कि ये मेरे बालक का आखिरी गर्भ होगा, मतलब गर्भाशय होगा, मेरे गर्भाशय के पश्चात वो किसी माता के गर्भ में नहीं जाएगा, ऐसा हमको प्रण करना चाहिए। हर गर्भवती माता को प्रण करना चाहिए, दिस इज द लास्ट वूम्ब दैट दिस सोल विल कम इन टू एंड नेवर अगेन टू कम बैक अगेन इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। और अगर यहाँ पर कोई गर्भवती नहीं है, सबके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तब भी आपको प्रण करना चाहिए कि मेरे गर्भ से निकला हुआ जीव दोबारा इस दुनिया में जन्म मृत्यु की ठोकरें खाने के लिए नहीं आएगा, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा या करूँगी। तो ये पेड़ जो है यहाँ के, इनके अंदर और भी शक्ति होती है, एक तो वो कल्प वृक्ष है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन इस पेड़ के आसपास जो भी कुछ होता है उसकी सार रूप में चेतना भी स्वीकार करते हैं, दे कैप्चर द एसेंस ऑफ द एक्टिविटीज अराउंड इट। तो इस पेड़ के नीचे ठाकुर हरिदास ने बहुत समय तक 22 घंटे 192 माला 300,000 भगवान के नाम का जप किया है। तो सारा जो वो कृति है, जो उनकी शुद्ध भक्तिपूर्ण कृति है, शुद्ध नाम का जप जो किया उन्होंने, उसका सारा सार इस पेड़ ने ग्रहण किया है। इसलिए हम लोग धाम में जाकर उन पेड़ों को मिलते हैं, गले मिलते हैं, क्योंकि वो हमारे सच्चे मित्र हैं। क्योंकि जब वो सार ग्रहण करते हैं और उनके संग में और कोई आता है तो उस सार को उनको दे देते हैं। इसलिए हमने कथा भी इनके तले हमने किया है। हाँ, हमारे गुरुजी का आदेश है ऐसे कि जहाँ पर धाम में जाएंगे तो वृक्ष के नीचे बैठकर कथा करना, क्योंकि धाम में जो भी लीलाएँ हुई हैं, सत्ययुग में हुई है, त्रेता में हुई है, द्वापर में हुई है, कलयुग में हुई है, अभी तक हुई है, आज भी हो रही है, कल भी होने वाली है, ये सभी लीलाओं का जो संग है इस पेड़ को प्राप्त होता है, वो ग्रहण करते हैं और सार जो है उनके संग में आगे आने वाले सभी जीवों को वो सांग दे देते हैं और लाभ हो जाता है। इसलिए यहाँ से जाने के पहले इस पेड़ से बड़े प्रेम से मिलना एक मित्र की तरह, और हृदय की इच्छा प्रकट करना कि हम इस दुनिया में बार बार नहीं आना चाहते हैं। हम बीच बीच में भगवान के धाम में आने के बजाय परमानेंट भगवान के धाम में रहना चाहते हैं, साल में 5 आने के बदले में पूरा साल भर वहीं रहना चाहते हैं भगवान के चरणों में उनकी सेवा करते हुए, क्योंकि इसमें ही सच्चा आनंद है। तो ये धाम के जो वृक्ष हैं, धाम की वेली है, धाम का तृण का पत्ता है, यहाँ के मच्छर है, यहाँ कीटक है, बंदर है, ये सभी भगवान के सखा हैं और देवता उनको चतुर्भुज स्वरूप में देखती हैं, है ना। तो ये आपको बताना बाकी रह गया था। और दूसरी बात बताना ये रह गया था कि आप देखें कल के प्रवचन फिल्म में कि वो काजी के पास लेके जाते हैं, उसको काजी उसको नवाब के पास लेके जाते हैं और नवाब कहते हैं कि आप क्यों भगवान के नाम का जप कर रहे हो, आप तो यवन कुल में जन्म हुए हो, अल्लाह का नाम लो, हाँ कुरान को पढ़ो, ये सब क्यों कर रहे हो। तो काजी तो बड़ा द्वेष से जल रहा होता है, तो इसको मारना चाहिए, इसको एक ही दंड है, अगर कोई यवन कुल में जन्म लेकर पराय धर्म को अपनाता है तो मृत्यु के अलावा कोई दंड नहीं है उसको। तो हरिदास जी क्या बोलते हैं, आप देखो पिक्चर देखना कथा सुनना बहुत आसान होता है, हमको क्या करना है, हमको तो बैठ कर देखना है, लेकिन आप अपने आप को हरिदास के पोजीशन में जाके देख लो, गो इन हिज शूज एंड सी क्या उनकी स्थिति होगी। हाँ, सब लोग उनको धमका रहे हैं, जान से मार देंगे आपको, बंद करो आपका हरिनाम कीर्तन। वो क्या बोलते हैं, मेरे शरीर के आप 1000 टुकड़े करो और उस हर एक टुकड़े के और 1000 टुकड़े करो, मतलब कितने टुकड़े हो गए, 10 लाख हो गए ना। 10 लाख टुकड़े करने के बाद भी हर एक टुकड़े से भगवान का नाम का आवाज सुनाई पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं भगवान के नाम के जप की विधि से इतना आसक्त हो गया हूं कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मेरे अस्तित्व को आप 10 लाख टुकड़ों में विभाजित कर सकते हो, लेकिन फिर भी हर एक टुकड़ा भगवान का नाम ही पुकारेगा। जैसे अर्जुन की अवस्था थी, युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण भगवान को कि आपने अर्जुन को क्यों चुना गीता सुनाने के लिए, हम भी आपके भक्त थे, हम भी आपके साथ में बैठकर गीता सुनने के योग्य थे, सुनने का आपको बताएंगे कभी समय आने पर। तो एक बार अर्जुन विश्राम कर रहे थे, तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर से जाओ, उनके पास जाओ और उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर अपना कान लगाओ। तब युधिष्ठिर जब उसके पास में गए तो उनके रोम रोम से कृष्ण 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 की ध्वनि निकल रही थी, हर एक रोम से। तब वो समझ में कि ये इनको क्यों चुना उन्होंने, उनका पूरा अस्तित्व था, उनकी मन बुद्धि, उनका शुद्ध अहंकार, उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनके शरीर का कण कण जो है वो कृष्णमय था, समर्पित था उनके लिए। उसी तरह से ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर के रूप में आए तो उनका हर एक अस्तित्व, हर एक कर्ण जो था उनके अस्तित्व का, वो भगवान के नाम के लिए समर्पित था। अरे हम लोग सोचते हैं अरे हमारा बीमार है, हम लोग हमको कैंसर हो गया है, हमारा बच्चा अपाहिज है, हमारे घर में माता बीमार है, हमारे घर में धन नहीं है, हमारे घर में गरीबी है, हम पढ़े लिखे नहीं है और ये समस्या है, हमारा डिवोर्स हो रहा है, हमको ये तकलीफ है, हमको वो तकलीफ है, हम भगवान का नाम नहीं कर सकते। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ठाकुर हरिदास जैसे कष्ट आया हुआ है कभी? क्या हम कह सकते हैं कि हमको प्रहलाद का कष्ट हमारे जीवन में आया है कभी? हर रोज प्रहलाद के पीछे एक राक्षस, दो राक्षस, 50 राक्षस जो है भयंकर शस्त्रों को लेकर उनको मारने के लिए आते थे, खेल खेलने के लिए नहीं, जान से मारने का आदेश था उनको। ठाकुर हरिदास को भी मारने का आदेश दिया गया था, इसे मारो। जो कोड़े दो मार्केट में मारने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु होती थी, वो स्वयं बोल रहे ना वो मारने वाले, अरे तुम जीवित कैसे हो, दो मार्केट प्लेस में मार खाने से वो आदमी मर जाता है, तुम तो वाकई बहुत शक्तिशाली लगते हो। और मारने वाले थक गए लेकिन उनके मुंह से कृष्ण का नाम बंद नहीं हुआ। और यहां तक कि नहीं, अभी आज के कथा में आपको फिल्म में दिखाएंगे कि जब उनको मारने का शुरू आरंभ हुआ तो महाप्रभु चैतन्य वहां पर प्रकट हो गए बहुत भयंकर क्रोध में, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों का अपराध सहन नहीं करते। तुरंत वहां पर आए, चक्र चक्र करके चक्र को आह्वान किया, उनके हाथ पर चक्र तुरंत प्रकट हो गया और आदेश दिया जाओ इनका वध करो। लेकिन उसी समय हरिदास ठाकुर उनके मुख को देखकर बोल रहे थे भगवान इनको माफ करो, इनके अपराध को स्वीकार मत करो, ये बड़े दुखी और बड़े क्या कहते हैं उसको बैड लक, मतलब दुर्दैवी जीव है ये, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उनके अपराध को आप मत लेना, मेरी तरफ से मैं उनको माफ करता हूं, आप भी उनको माफ कर देना। तो इनकी दया और करुणा को देखकर भगवान का चक्र उनके उंगली से बाहर नहीं निकला। चैतन्य महाप्रभु ने बताया बाद में उनको कि मैं मेरे चक्र को अपनी उंगली से नहीं बाहर कर सका, चक्र मेरा नियंत्रण से बाहर चला गया था, चक्र कुड नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स, क्योंकि आपकी करुणा का प्रभाव इतना तेज था कि मेरा क्रोध उस पर हावी नहीं हो सका, फिर मैं असहाय हो गया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु परम भगवान, परम पुरुष लीला पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं कि आपके करुणा के सामने मैं असहाय हो गया, मैं उनको दंड नहीं दे पाया, तो मैं क्या करता, तो मैंने मेरी कांति को आपके शरीर पर डाल दिया और सारे घाव जो है वो मैंने स्वीकार कर लिए अपने पीठ पर, देखना चाहते हो? और चैतन्य महाप्रभु घूम गए ऐसे और पूरे लाल कोड़ों कोड़ों के घाव गिरे हुए जो दाग थे उनके पीठ पर थे। तब हरिदास ठाकुर बेहोश हो गए कि भगवान आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, क्या मेरी योग्यता है कि आपने मेरे लिए ऐसा किया? तो हम देख सकते हैं कि बहाना बनाना तो बहुत आसान है, हम कहीं बहाने बना सकते हैं, अरे प्रभु जी प्रैक्टिस सेटल नहीं हो गया है अभी, प्रभु जी फैमिली सेटल नहीं हो गई है, प्रभु जी अभी तक घर पर लोन है, हाँ प्रभु जी माता जी घर में बीमार है, अरे ये शरीर में ये कष्ट है, रात को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, क्या करें 15 घंटा काम करना पड़ता है, मैं अभी अरे बड़े बड़े पोस्ट पर हूँ, 12-12 घंटे मीटिंग होती है, जहाँ ट्रैवलिंग करना पड़ता है, प्रभु जब नहीं हो पाता है, ये सब बेकार के बहाने हैं। क्योंकि जब आप मृत्यु के सामने खड़े हो जाएंगे तो मृत्यु को नहीं बोल सकते प्रभु जी बहुत बिजी थे हम लोग, ये मीटिंग थी, वो मीटिंग थी, ट्रैवलिंग कर रहे थे, यूके यूएस में जा रहे थे, मृत्यु बोलेंगे थैंक यू वेरी मच दोबारा आ जाओ। मृत्यु के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं है, एक ही आर्गुमेंट मृत्यु के सामने हो सकती है, वो है भगवान का नाम। अगर वो आप करते हैं लेते हैं तो मृत्यु के जो दूत होते हैं, मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यमदूत, वो आपके सामने आ ही नहीं सकते, दे कैन नॉट कम देयर। उनको टालने का केवल एक ही मार्ग है, वो है हरि नाम। अजामिल ने असहाय अवस्था में अनजाने में भगवान को पुकारा, यमदूत आए, भ्रमित हो गए और चले गए, और यमराज को प्रश्न करने लगे कि ये क्या बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले जहाँ पर हरि नाम होता है वहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, जहाँ तुलसी माला कंठ में पहनी गई है वहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, और अगर आपको उस समय पर भगवान की याद करनी है तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस समय वही याद आएगा जो आपने जीवन भर किया है, जीवन भर धन कमाया है धन की याद आएगी, जीवन भर प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस की याद आएगी, जीवन भर बालक पर प्रेम किया है तो बालक ही याद आएगा, और जीवन भर भगवान को प्रेम किया है, उनका नाम लिया है तो वही याद आएगा। इसलिए अगर हरिदास ठाकुर, वो क्या कहते हैं जब काजी उसको मिलने आते हैं माफ़ी मांगने के लिए, नवाब भी आता है और जल्लाद भी आते हैं मारने वाले, हमको माफ़ कर लो, तो क्या कहते हैं कि जीवन में कोई भी संकट आ जाए, मृत्यु सामने खड़ी हो आपके, कोई बीमारी हो जाए, बुढ़ापा बीमारी से आप ग्रस्त हो, कोई संकट आपके आ जाए, फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना, ऐसा कहते हो, क्योंकि वो एक ही तारणकर्ता कार्य है भगवान के नाम का जप। कितने निर्भय थे वो, भगवान का नाम का जो सहारा लेता है वो सही रूप में निर्भय हो जाता है। निर्भय का मतलब ये नहीं कि किसी बड़े आदमी से डरना, हाँ निर्भय मतलब मृत्यु से भी आदमी निर्भय हो जाता है, मृत्यु को गले लगाता है क्योंकि जानता है कि जब मैं मृत्यु मरी हो जाएगी तो मेरे प्रिय भगवान से मेरी मुलाकात हो जाएगी, मेरा मिलन होगा उनसे, इसलिए मृत्यु से डरता नहीं, वो मृत्यु का इंतजार करता है, वो कब वो घड़ी आएगी जब मैं शरीर से मुक्त होकर मेरे प्रिय भगवान के चरणों में लीन हो जाऊंगा, वो निर्भयता है। अइ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, हे भगवान इस दुनिया में विषम भव सागर में मैं डूब चुका हूँ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, आप मुझे चरणों में एक धूलिकण की तरह आश्रय दे दीजिए, वही मेरा असली स्थान है और वही सबसे अभय स्थान है जहाँ पर दुनिया का कोई प्रभाव, त्रिगुणों का प्रभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रभाव, गलत मति का प्रभाव वहाँ पर नहीं हो सकता है, इसलिए हम सबको वो अभय स्थान जो है वो प्राप्त करना है। हरिदास ठाकुर कितने निर्भय थे, हाँ कितना विश्वास के साथ बोलते हैं कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा। नवाब बोलते हैं क्यों इतना जिद कर रहे हो, मैं छोड़ दूंगा आपको, आप खाली ये जोर से बोलना छोड़ दो, खाली बस इतना ही करो, अपने घर में बैठो और शांति से करो। पर नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं सब लोगों के सामने नाम उच्चारण करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि चर अचर सृष्टि का सबका उद्धार होता है, और मैं घर में बैठ के शांति से जप नहीं कर सकता हूँ। कितना विश्वास था उनके अंदर भगवान के लिए, इसलिए वो नामाचार्य थे। उनके जीवन में नाम का जप करने के लिए सब कुछ प्रतिकूल था, उनका जन्म, उनका बिरादरी, उनका कार्य, उनका स्थिति, हर तरफ से वो विपरीत परिस्थिति में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी भगवान का नाम कैसे करना चाहिए उसका एक उदाहरण स्थापित किया। हमारे जीवन में बहुत कारण होंगे लेकिन उन कारणों का अभ्यास करना और देखना कि क्या हम प्रहलाद और हरिदास ठाकुर जैसे संकट में है क्या, नहीं है, उत्तर नहीं है। 5 साल का बालक अगर हर रोज उसको राक्षस लोग कोई भी पहाड़ से फेंक रहे हैं, कभी नदी में डाल रहे हैं, कभी समुद्र में डुबा रहे हैं, कभी आग में जला रहे हैं, कभी भाले से भोग रहे हैं, कभी विष दे रहे हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, पिता स्वयं इतना बड़ा तलवार लेकर उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा है, ये तो कैंसर जैसा है, उसको काट कर फेंक देना चाहिए, कुल का नाश करने वाला है, स्वयं पिता बोलता है कि अब मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारा नाश करूंगा, मतलब संबंधी जो है जन्मदाता वो भी उसके खिलाफ है। इतना भयंकर अवस्था में भी वो शांत खड़े थे, आराम से हंस रहे, बाद में क्या बोलते हैं, नरसिंह भगवान ने उतार लिया, सब लोग कांप रहे हैं उनको देखकर, देवता भी कांप रहे हैं, लक्ष्मी देवी उनकी सखी भी कांप रही है, प्रहलाद जी शांति से खड़े, किसी को आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं लक्ष्मी तुम जाओ, बोले ब्रह्मा जी आप जाओ, अरे इंद्र आप जाओ, सब लोग कांप रहे हैं, बोले ये हमको जानते नहीं, हमको ये कौन है, नए रूप में आए हुए हैं, तो सब लोग हार जाते हैं, प्रहलाद को बोलते हैं तुम जाओ, हंसते हुए माला लेकर सामने जाते हैं, उनको देखकर ही तुरंत ही भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए निर्भय होने के लिए पैसा, शक्ति, पोजीशन, हेल्थ, इसकी आवश्यकता नहीं है, निर्भय होने के लिए भगवान की भक्ति होनी चाहिए, वही व्यक्ति निर्भय हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय मृत्यु का है और भक्त जो है मृत्यु के भय से मुक्त रहता है हमेशा, केवल भगवान के नाम का शरण ग्रहण करते हुए। इसलिए आप लोगों को हम विनती करते हैं कि अपनी धाम की यात्रा वेस्ट मत करना। धाम में से भगवान के नाम के जप के लिए रुचि और आसक्ति और डिज़ायर लेके जाना, यहाँ से उसकी मांग करना कि भगवान हमारे अंदर सबकी रुचि है, इंद्रिय भोग की रुचि है, शरीर के भोग की रुचि है, अच्छा अच्छा खाने की रुचि है, अच्छा पहनने की रुचि है, अच्छा अच्छा व्यवस्था की रुचि है, लेकिन हमारे अंदर नाम की रुचि नहीं है। हे भगवान, आप हमको नाम की रुचि देना। हमारा मन सब जगह आसक्त है, हमको नाम के लिए जप के लिए आसक्ति देना, तब जाकर आपकी यात्रा जो है वो सफल हो जाएगी। और हम आपको शुभकामना देते हैं इस सुंदर जगह पर खड़े होकर कि ये वृक्ष जो है इसने हरिदास ठाकुर का जप का अवलोकन किया है। आप इससे भिक्षा मांगना कि हरिदास ठाकुर के अंदर जो आसक्ति और प्रेम था भगवान के लिए, उनके नाम के जप के लिए, जिस प्रतिकूल स्थिति में उन्होंने भगवान के नाम का जप किया, वो हमें देना, उसकी कृपा हमें करना। ये वृक्ष की और भी एक लीला है कि जगन्नाथ हरिदास ठाकुर का देहांत भी यहीं पर हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के साथ समक्ष सामने होते हुए हरिदास ठाकुर का शरीर यहाँ छूटा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने उनके चरणों को अपने मतलब अपने चरणों को उनकी छाती पर दिया, अपने आंखों से वो उनके मुखकमल का अवलोकन कर रहे थे, आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। और भीष्मदेव जैसे इच्छा से उन्होंने भगवान के गोद में अपना शरीर छोड़ा। इसी जगह पर उसके पहले वो पूछते हैं कि हरिदास तुम्हें क्या कष्ट है, तो क्या बोलते हैं, मेरे में एक ही रोग है। बोले तुमके रोग है, क्या रोग है आपको? मेरा एक ही रोग है कि मैं मेरी नियमित मालाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। आई कैन नॉट चैंट माई प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स। तो भगवान कहते हैं, अरे हरिदास, आपने जन्म भर 300,000 नाम का जप किया है, अभी आप अपने नियम में थोड़ा सा शिथिलता कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने जीवन में नाम के जप की परिपूर्णता कई दिन पहले ही प्राप्त कर चुकी है, अभी आप थोड़ा शिथिल हो जाओ, क्योंकि उस दिन उनका उपवास है, वो महाप्रसाद नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं महाप्रसाद खा रहे हो? मुझे रोग हो गया है। क्या रोग हो गया है? कि मैं मेरे नियमित माला अब तक पूरा नहीं किया हूँ, तो मैं कैसे खा सकता हूँ महाप्रसाद? लेकिन ये जगन्नाथ का महाप्रसाद है, इसलिए मैं एक कर्ण उसका ले लूँगा, लेकिन पूरा नहीं लूँगा, और जप करके बाद में लूँगा। ये उनकी स्थिति है। और हम लोग को 16 कप पूरे हो रहे हैं, 2 घंटे से बैठा हूँ, अब तक 8 ही वाला हुई है, और 16 होने के बाद मैं अभी कल तक मैं भूल जाऊँगा, मेरे घर के माले में डाल दूँगा उसको माला को, और कल ढूंढूँगा उस माला को माले से जप करने के समय, क्योंकि गुरुजी ने बताया है, नाम दिया है नया, तो भी कोला माला करना ही पड़ेगा। ये हमारी अवस्था है। और वो ऐसे हैं कि उनकी माला जो है 192 माला का खुद नियम लिया है, और उसमें भी वो संतुष्टि नहीं है उनको, उपवास कर रहे हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर थे जिन्होंने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के गोद में अपना शरीर छोड़ा है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वो अपने गोद में लेकर नाचते हैं उनको, उनके मृत शरीर को लेकर नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, पूरे गलियों में जाकर नाचते हैं, और कहते हैं जय जय हरिदास। बोलिए जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। जो भी इस नाम को पुकारेगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत ही जल्द कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और उनके भवरोग को नष्ट कर देंगे और कृष्ण भक्ति का उनको दान देंगे। और जो जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर के विराव तिरुभाव का लीला सुनेंगे, तिरुभाव के बारे में वर्णन सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसका अवलोकन करेंगे नाटिका के रूप में, या उस समय जो लोग थे वो कहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर थे जिनके सामने ये ध्यान तो हो गया है, उन सबको मैं वरदान देता हूँ, ये सब लोग भवरोग से मुक्त हो जाएंगे और भगवान कृष्ण उन पर बहुत जल्द अनुकंपा करेंगे और करुणा करेंगे, अपने हाथ से उनका समाधि क्रिया जो है महाप्रभु जी ने किया। जैसे वो थे जटायु, अपने हाथ से उन्होंने, रामचंद्र भगवान ने उनका दाह संस्कार किया, तो पिता को भाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, वो जटायु को प्राप्त हुआ। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से उनका कीर्तन किया, समुद्र में जाकर उनका शरीर को उन्होंने स्नान करवाया, अपने हाथ से गड्ढा खोदकर उनको समाधि में रखा, अपने हाथ से मट्टी दिया और समाधि पूरा किया उनका। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के हर दुकान में गए, हर बानिया के पास गए और हाथ फैलाकर उन्होंने मांगा कि मैं हरिदास ठाकुर के श्राद्ध के लिए आपके पास अनाज मांग रहा हूँ। सभी दुकानदारों ने भर भर कर उनको अनाज दिया, वो लेकर आए, अपने हाथ से उन्होंने खाना बनाया श्राद्ध का, और अपने हाथ से उनके श्राद्ध का पात्र जो है सब भक्तों को खिलाया। कितने काम किया भगवान ने, अपने शरीर में मृत्यु उनको दिया, अपने हाथ से कीर्तन करवाया, अपने हाथ से समुद्र में स्नान करवाया, अपने हाथ से मट्टी डालकर समाधि में उनको आसन दिया, फिर उनके लिए भिक्षा मांगी, अपने हाथ से खाना बनाया और अपने हाथ से सबको परोसा आंखों में आंसू लेकर, ऐसे भक्त थे। और स्वयं भगवान कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है भीष्मदेव से संबंधित है, जैसे भीष्मदेव ने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया, ठाकुर हरदास ने भी यही इच्छा की थी, क्योंकि वो जानते थे कुछ समय के बाद में चैतन्य महाप्रभु का लीला समाप्त होने वाला है, आखिरी अध्याय है ये उनके लीला का। तो कहते हैं, हे भगवान, हे महाप्रभु जी, आपके लीलाओं का आखिरी अध्याय जो है मैं देखना नहीं चाहता, उसके पहले मुझे यहाँ से विदा करो। बोले, क्यों ऐसा कह रहे हो तुम? नहीं भगवान, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके मुख कमल को निहारते हुए, आपके चरण कमल छाती पर धारण किए हुए, आपका ही ध्यान करते हुए मुझे शरीर को छोड़ना है। और उसकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। और फिर आते हैं और उनको पूछते हैं, क्या खबर है हरिदास? तो क्या जवाब देते हैं हरिदास ठाकुर? जो कृपा आप करेंगे वही आज की ताज़ा खबर है। वॉट एवर मर्सी यू गोइंग टू गिव मी, दैट इज़ द न्यूज़ माई लॉर्ड। और उसी दिन उनका देहांत हो जाता है। अगर जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, सबको परिवार को संभालते हैं, बड़ा करते हैं, सब मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उस जीवन को वैल्यू है जिस पर भगवान की निगरानी है, भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर गिरती है, वो जीवन जीवन कहला सकते हैं। नहीं तो जीवन तो सव समान, हम सब लोग मुर्दे की तरह घूम रहे हैं। जो आत्मा में कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो जीवन मुर्दे के समान है। इसलिए हम सबको जीवित होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब कृष्ण की ओर हम जागृत होते हैं तो हमारा जीवन हम जीवन कह सकते हैं, और उसी जीवन के बाद हम भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा और धन्यवाद। अभी हम हरे नामाष्टक गाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।